कहीं न रब्बक हुवे खल्लाक अलीम, यकीनन आपका रब पैदा करने वाला खूब जानने वाला है, उसको खूब पता है। यहाँ देखिए अल्लाह ताला की ये सिफत खल्लाक, फ़ाल का वजन है कि खालिक, और खल्लाक तो उससे बहुत बड़ी चीज़ है, यानी उसको पता है मैं, वो मेरे बंदे हैं, मुझे पता है मैं अपनी मखलूक को खूब जानता हूँ। सूरह मुल्क आयत 14 में क्या आता है, अला यालमु मन खलक, क्या वही ना जानेगा जिसने पैदा किया, वहुवा लतीफुल खबीर, वो तो खूब बारीक बीन भी है और ख़बरदार भी है। क्या एक इंजीनियर नहीं जानता कि मशीन के पुर्जे क्या हैं, क्या एक कंप्यूटर इंजीनियर नहीं जानेगा कि कंप्यूटर में क्या क्या प्रोग्रामिंग हुई है, तो क्या अल्लाह को नहीं पता बंदे तुझे क्या चाहिए। आप क्या कीजिए अपने इस गम को गलत करें, लोगों के रवैयों की वजह से जो दिल दुखे तो किस चीज़ पे खुश हो। आयत 87, और हमने आपको दे दी है 7 बार बार पढ़ी जाने वाली आयतें और अजमत वाला कुरान। किधर से तवज्जो उठाकर किधर लाई जा रही है, सबल मसानी, सबन कहते हैं 7 को, सबा आइन से, और मसानी का लफ्ज सा नून या से, सनीया, सनीयन कहते हैं दोहरा करने को, सना लफ्ज़ भी इसी सही है, अल्लाह की सना, क्योंकि बार बार दोहराते हैं ना बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तारीफ बार बार की जाती है, तो सना कहते हैं किसी के अच्छे और साफ बयान करना। ये जो लफ्ज़ है ना अरबी में तस्निया, ड्यूल की तरह, वो भी यही लफ्ज़ है, क्योंकि उसमें एक चीज़ थी अब दो हो गई। उलमाए कराम का इस पर इजमा है कि सब अम मिनल मसानी से यहाँ मुराद सूरत अल फातिहा है। 7 बार बार दोहराई जाने वाली आयतें क्यों, इसलिए कि सूरह फातिहा नमाज का लाजमी हिस्सा। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में आता है, ला सलात लिमन लम यक्रा बिफातिहतिल किताब, उस शख्स की नमाज ही नहीं जो नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ता। फिर आप देखिए जो भी नमाज, फ़र्ज नमाज, सुन्नत नमाज, नफिल नमाज, इस्तखारे की नमाज, हत्ता के जनाजे की नमाज, जो एक इंसान दूसरे इंसान के लिए पढ़ रहा होता है, उन सब में सूरत फातिहा मौजूद है। कोई ऐसी नमाज नहीं है जिसमें सूरत फातिहा ना हो। अल्लाह ने इसको इतना हुसन दिया, इतनी दफ़ा पढ़ी जाती है, और हदीस कुदसी है मुस्लिम में कि जिसमें अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला के अल्फाज बताए कि कसम तो सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन, मैंने नमाज को या सूरत फातिहा को अपने और अपने बंदे के बीच में आधा आधा बांट दिया। ये डिटेल्स आपको सूरह फातिहा की तफसीर में सुनाई थी, तो गोया कि यहाँ से मुफस्सरीन ने इस नुक्ते को लिया कि सब अम मिनल मसानी के बाद वाव है, ये नुक्ता नोट कीजिएगा, और ज़मीन और आसमान, तो दो चीज़ें हो गई ना। तो ये आयत बताती है कि कुरान अज़ीम एक अलग पूरी किताब है और सूरह फातिहा एक अलग चीज़ है। जैसे पिछले अंबिया कराम को सहाइफ मिलते थे, सुहुफ इब्राहिम व मूसा, सूरह ताला के आखिर में हम पढ़ते हैं, तो छोटे छोटे बुकलेट्स थे, टाइम टू टाइम मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती थी। इसी तरह नबी सल्लम को कुरान भी मिला और सूरह फातिहा भी मिली। इस आयत से ये बात पता चलती है कि सूरह फातिहा कुरान का हिस्सा नहीं है, सहूलत की खातिर इसको कुरान पाक के आगाज़ में लगा दिया जाता है। आज तो ऐसे ही है, यानी आज कोई ये कुरान नहीं छाप सकता कि आपको सूरह फातिहा हटा दें और उसको कर दें। नबी सल्लम के दौर में ही जब पाइल अप हुआ कुरान, तो सूरह फातिहा आपके साथ थी, और ये दो दफ़ा कहते हैं नाजिल हुई है, एक दफ़ा मक्की दौर में और एक में मदनी में। ये क्या है इंशाल्लाह दारा कुरान में हम खुद ही देख लेंगे वनडे को कि क्या होगा, लेकिन बात समझ आ गई कि सूरह फातिहा की अहमियत, और किसी चीज़ को कुल में से निकाल कर जुज के तौर पर अलग से पेश कर देना कैसे। चलिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ जिससे आप इस बात को बात समझेंगे। आप देखिए कोई 1.5 घंटे की कोई वीडियो होती है, कोई स्पीच है, फिल्म कह लें आप, चलें उसमें बात और समझ आती है। लोग चाहते हैं कि लोग इस फिल्म को देखें, तो क्या करते हैं, उसके बीच में से कोई क्लिप निकालते हैं, कोई बहुत अच्छे डायलॉग, कोई बहुत अच्छे एक्शन, और उसको पहले से ट्रेलर के तौर पे पेश करते हैं। तो सूरह फातिहा इज़ द ट्रेलर ऑफ कुरान, पूरे कुरान के मज़ामीन का खुलासा सिर्फ सूरह फातिहा में, इसलिए इसको अल्लाह ताला ने कहा। और साथ ही अब देखिए कुरान अज़ीम, यहाँ से कुरान का नाम भी आपको पता चल गया कि कुरान पाक को कुरान अज़ीम भी कहा गया इसकी अहमियत की वजह से। और बाज़ कहते हैं कि ये सूरत फातिहा ही को कुरान अज़ीम कहा गया, यानी ये अज़ीम कुरान का दर्जा रखती है, اسی طرح آپ دیکھیے سورت کا نام اساس القرآن بھی ہے، قرآن کی بنیاد، ام القرآن بھی ہے قرآن کی جڑ، الکافیہ کفایت کرنے والی، الشافیہ شفا دینے والی۔ تو عربی زبان میں جس چیز کے زیادہ نام ہوں وہ اتنی اہم ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی کوئی سورت نہ تو تورات میں، نہ انجیل میں اور نہ قرآن میں۔ تو یہاں اصل میں اللہ کے نبی کی دل جوئی کی جا رہی ہے، اے نبی آپ دیکھیں تو صحیح ہم نے آپ کو کتنا پیارا خزانہ دے دیا۔ اگر ابو جہل خود کو مالدار سمجھتا ہے تو کیا وہ مال والا ہے؟ اور اگر ولید بن مغیر اپنے آپ کو ایک بہت بڑا سردار سمجھتا ہے تو کیا وہ سردار ہے؟ یہ تو لوگوں کی سوچ ہے، ان کو کیا پتا کہ ہم نے آپ کو کتنی بڑی دولت دی۔ لہٰذا اب کیا کرے؟ آیت 88، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواج منہم، آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس مال و متاع کی طرف جو ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو دے رکھا ہے۔ ولا تحزن علیہم، اور ان کی حالت پر غم بھی نہ کھائیے۔ بلکہ تیسرا کام، واخفض جناحک للمؤمنین، اور اہل ایمان کے لیے اپنے بازو جھکا کر رکھا کرے۔ یہ تین نقطے نبی کو سجھا دیے ساری مخالفتوں کے جواب میں، کیا کہ چونکہ ہم نے آپ کو قرآن جیسی دولت دے دی تو اب آپ کیا اس کے باوجود پھر لوگوں کی دولت کو دیکھیں گے؟ ابو جہل کی دولت، ولید بن مغیرہ کے باغات اور ان کافروں کی جاگیریں، آپ کو کیا لگے ان سے؟ آپ تو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا و ما فیہا کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ دیتا۔ تو کافروں کو جو مال و متاع دیا گیا ہے اللہ کے نزدیک اس کی کچھ اہمیت نہیں۔ اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی مال و دولت کو اللہ کی نظر سے دیکھے۔ اب میں اور آپ ذرا اس آیت پہ چھوٹی سی بات اپنی بھی تو سمجھیں، کیا یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے؟ کیا یہ سبم مثانی اور قرآن عظیم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا؟ قسم کھانے کو دل نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اگر قسم کھا کے کہوں کہ جو دولت مجھے اور آپ کو اس قرآن کی صورت میں ملی ہے، یہ دنیا کی ہر چیز سے اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد اگر ہمارے دلوں میں کمپلیکسز ہیں، احساس محرومی ہے، تقابل ہے دوسروں سے، دوسروں کے مال اولاد، ان کی دولت، ان کی حیثیت اور ان کے حسن سے ہم مائل ہیں، تو مان لیجئے کہ ہم نے اپنی دولت کی قدر نہیں کی۔ ہوتا بھی یہی ہے، جو چیز پاس ہوتی ہے نا ہم اس کی ذرا قدر نہیں کرتے، اور جو چیز دور ہوتی ہے ماہیں بھرتے ہیں۔ بعض دفعہ اپنے بچے اتنے اچھے ہوتے ہیں ماؤں کے، لیکن وہ دوسروں کے بچوں پہ نظریں رکھتی ہیں۔ بعض دفعہ اپنے شوہر اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے انسان ہونے کے ناطے پورے تو آپ کے ہاتھ میں وہ نہیں آ سکتے، لیکن دوسروں کی باتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ اس لیے ایک انسان کو اس میں ایک اصول دیا گیا، کیا آپ دیکھیے تو صحیح یہ کیا دولت آپ کو ملی ہے، اور ہم بھی تو سوچیں ہمیں اللہ نے کتنی پیاری دولت دی ہے۔ آپ دیکھیے پسے ہوئے لوگ ہیں، تڑپے ہوئے لوگ ہیں، اللہ نبی اور آپ کے ساتھیوں کی تسکین اور تسلی کے لیے کہہ رہے ہیں، لوگوں ایک وقت وہ تھا کہ جب اس سے بھی برے حالات تھے۔ دیکھیے قرآن سے پہلے کوئی لوگ بڑے خوش تھے، آپ اور اگر اس کورس کو اپنے اوپر مشکل سمجھتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کافی زیادہ تکلیفیں اس میں آ رہی ہیں، تو آپ سوچیے کہ اس سے پہلے آپ خوش تھے؟ کیا 9-10 مہینے پہلے آپ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون تھے؟ کیا آپ ایپل آف دی آئیز تھے؟ کیا آپ کے شوہر نے آپ کا نام دے دیا کہ دی بیسٹ وائف آف دی ورلڈ؟ کیا آپ کے بچوں نے دی بیسٹ موم آف کی نام دیا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تھا بھی تو ان شاء اللہ وہ آج بھی ہے، کوئی رکا تھوڑی ہے آپ کے قرآن پہ آنے سے۔ لیکن اس کتاب کے ساتھ تعلق لگانے والا، جوڑنے والا بندہ اگر دوسری چیزوں کو دیکھے تو سمجھ لیجئے کہ اس نے اس قرآن کی قدر نہیں کی۔ یہ ایک حدیث کا خلاصہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس کتاب کے آنے کے بعد دوسری چیز کو دیکھا اس نے اصل میں اس قرآن کی ناقدری کی، اور جب کیا اس کو چھوڑ کر پھر دنیا کے کھیل تماشوں میں مگن ہو جانا، کیا وہ سیر ہے اور کیا وہ فن ہے اور کیا وہ مووی ہے اور کیا وہ شاپنگ ہے اور وہ کیا گھرداری ہے کہ جو اس کتاب کو چھوڑ کر چل پڑے؟ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ فارغ لوگ ہیں؟ نہیں، آپ سب کے گھروں میں کام ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے شوہر ہیں۔ کیا دولت جو آپ کو مل رہی ہے جو آپ کو یہاں لے کے بیٹھی ہے؟ اب آپ میرے سے زیادہ اس بات کو اچھا سمجھتے ہیں، کیسے کن کن مرحلوں سے آپ گزر کے آتے ہیں؟ کیا آپ کا خیال ہے آپ کا رب اس کی قدر نہیں کر رہا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے تم ایک دفعہ قدر کرو، پھر دیکھو میں تمہاری جو قدر کرتا ہوں۔ आप देखिए कि नबी सल्लम के ऊपर एक वक्त था कि आप मक्का में कारोबार करते थे, लेकिन जो ही आपको नबूवत मिली, आप हज़रत खदीजा रसीला ताला अन्हा का माल 12 साल तक अल्लाह के नबी और इस्लाम पर खर्च होता रहा। मुसलमानों में से बाज छोटी उम्र के, जिसको आप यूथ कह लें, उनको घरों से निकाल दिया उनके माँ बाप ने। बाज कारोबारी और तिजारत पेशा लोग थे, सोसाइटी ने बायकॉट कर दिया कि इनसे माल नहीं लेना। 3 साल तक शाबे अभी तालिक में मुआशी तौर पर बायकॉट किया गया। गरीब मस्कीन कुछ भी नहीं था, हत्ता कि आपको पता है कि मक्का और उसके इर्द गिर्द की बस्तियों में लोग मजलूमी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ताने, तहकीर, तस्हीक, इल्ज़ामात, कल्बी रूहानी तकलीफ़ें, क्या नहीं मिली नबी और उनके साथियों को। और उसके बरक्स ज़रा देखिए, मक्का वाले बड़े बड़े सरदार दौलतों में मगन, माला माल, खुशहाल, ऐसे हालात में फिर बंदे को लगता है ना कि शायद मैं गलत ही कर रहा हूँ। तो अल्लाह कहता है कि तुम दिल ना तोड़ो, ला तहज़न, ये दूसरा सुलभ। क्योंकि जब कुरान वाला दूसरे का गम हद से ज़्यादा करे कि बीमार पड़ जाए, रोग लग जाए, तो फिर दीन कहाँ होगा। ये अब एक अगला असूल है, तड़पो, कोशिश करो, फले अल्लाह का बाखियन करो। लेकिन जहाँ तुम्हें लगे कि किसी दीन की कदर ना करने वाले का गम तुम्हारी सेहत को ख़राब कर रहा है, तुम्हारा वक्त उसमें चला जाएगा, तुम्हारी स्किल्स ख़त्म हो जाएंगी, तुम्हारा फोकस टूट जाएगा, तो कहा छोड़ो, उनको पीछे कर दो, उनको देखो जो तुम्हारे पास है। आखिरी आयत देखेंगे आप सूरत की, कि अल्लाह अपने नबी को वो खूबसूरत असूल सिखा रहा है जो आज बड़ी बड़ी कंपनीज अपने वर्कर्स को सिखाती हैं, कि फिर जस्ट हैंडल योर कस्टमर्स। कोई कुछ कह के चला गया तो उसको पीछे कर दो, क्योंकि ये दौलत बहुत बड़ी है, इस पर रश करो। तुम इनके हाल पे मत कुड़ो, अपने खैर ख्वाह को अपना दुश्मन ना समझो। ऐसे मामले कर लो कि जो गए हैं, जिनको आपसे तकलीफ़ है, जिन्होंने आपकी वजह से मक्का छोड़कर दूसरी तरफ जाना चाहा, वो खुद आ जाएं उस ज़ईफ़ा की तरह। कैसा खूबसूरत मंज़र है। और आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पे आज जो कीचड़ उछाला जाता है, क्या हम अपने नबी का ये रूप लोगों तक नहीं पेश कर सकते। और अगर हम मुसलमानों ने ये दीन आम किया होता तो आज वल्ला ही लोग अपने नबी के ऊपर ऐसी बातें ना करते। वाखफिज़ जनाहक लिल्मोमिनीन, ये कौन से मोमिन है जो आपकी दावत पे लब्बैक कहते हुए ईमान के अंदर आ रहे हैं। ये वो गरीब मस्कीन लोग हैं जिन्होंने अव्वल अव्वल इस्लाम कबूल किया। अब आप उनके साथ नरमी का मामला करें। एक लीडर को खूबसूरत बात सिखाई जा रही है कि आप ना आने वालों का गम छोड़कर ईमान वालों के लिए अपने बाजू झुका दें। शफकत, मेहरबानी, हैं ये फ़कीर मानते हैं, ये मिस्कीन हैं, ये ग़ुलाम हैं, ये बिलाल काला है, ये अब्दुल्ला बिन मसूद जिससे हो सकता है बकरियों की बू आती हो, लेकिन जब ये आपके महफिल में आए तो अब तवाज़ो के साथ इनका इस्तकबाल कीजिए, इनकी दिलजोई करें। ये चोटें खाते हुए आते हैं, यही बात सूरह अलनाम आयत 54 में हम पढ़ चुके हैं, फ़कुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा, इनके ऊपर सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैकुम, तुम्हारे रब ने अपने नफ्स पर रहमत लिख रही है। इसी तरह सूरह शुरा आयत 215 में हम पढ़ेंगे, वख्फिज जनाह कलिमन तबाक मिनल मोमिनीन, कहले ईमान जो आपकी पैरवी कर रहे हैं, आप उनके तरफ कंधे झुका दीजिए। आपको पता कि यही लफ्ज़ माँ बाप के लिए सूरत बनी इसराइल में आए, वख्फिज जनाह कमिन जुल्ली, तो क्या खूबसूरत मुकाम है इल्म सीखने के लिए आने वाले का। हम तो हमेशा उस्ताद के एहतराम की बात करते हैं ना, आपको ये आयतें तालिब इल्म, इल्म के सच्चे तालिबों का इकराम सिखाती हैं। कभी किसी को ताना ना दें, आप जाएं ना जाएं कहीं दीन सीखने, कोई दीन सीखने आता है आपकी दोस्तों में साथियों में, कभी उसका मजाक ना उड़ाएं। आपको क्या पता वो कितने खूबसूरत हैं जिनके रास्ते में अल्लाह ने फरिश्तों को बिछाया हुआ है, जिनके लिए मछलियाँ दुआएं कर रही हैं और जिनके लिए चुंटियाँ दुआएं मांग रही हैं, क्या मैं और आप उनकी वैल्यू पहचान सकते हैं। वकुल इन्नी अना नज़ीरुम मुबीन, और आप कह दीजिए मैं तो खुल्लम खुल्ला खबरदार करने वाला हूँ, मेरी इसके सिवा कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, क्या आप लोगों को वाज़े तौर पर बता दो, बस मेरा ये काम है। यानी आप तड़पते रहें, लेकिन ये ना कहें फ़लानी आया तो आज क्लास नहीं होगी। मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखे और मैंने ऐसी क्लासेस अटेंड की अपनी ज़िंदगी के एक दौर में कि अगर 20 लोगों की क्लास थी और किसी दिन 8 आ गए या 4 आ गए, 5 आ गए और बाकी ना आ सके, क्लास कैंसिल। जो नहीं आए चले छोड़े, आज क्लास नहीं करते, फिर उनका नुकसान होगा, अगली दफ़ा वो 4 भी नहीं आएंगे। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने अमल के लिए इस चीज़ पे रखा है कि अगर कभी किसी ऐसे एडवर्स कंडीशन, नॉर्वे में ऐसे होते हैं बिल्कुल, जब समर चलता है ना बिल्कुल पीक होता है कि स्टॉर्म आ जाता है, जब आप कह लें कि विंड का या स्नो का, तो हमने 2-3 लोगों की क्लास की मौजूदगी में भी अपनी क्लासें ऐसे ही कंडक्ट की हैं, क्योंकि एक भी बहुत है। और हमेशा हर नए प्रोग्राम में, मीटिंग में, जहाँ भी, आप लोगों ने भी कभी वास्ता होगा, वर्टफर्ट में भी लास्ट टाइम भी थी, मैंने कहा एक बंदा आ जाए तो क्लास शुरू करते हैं। और यकीन करें, अगर आप पूरी क्लास इधर ना हो, कोई एक आप में से होता, तो मेरे मुँह से जो बातें निकल रही हैं इंशाल्लाह यही निकलनी थी ना। कभी वक्त कम लिया, बाज़ लोग कहते हैं फुला आए थे, लोग ही थोड़े थे, वो तो बस 20 मिनट का दर्श दे के चले गए। ये दीन के फितने हैं, इल्म के फितने हैं। आपको पता है कि अगर नाम भूलूँ ना, मेरे जहन से इस वक्त निकल रहा है, पहले कई दफ़ा सुनाई हुई है बात, बालाकोट के नाते से उनका नाम आता है, बहुत बड़ी शख्सियत है हिस्ट्री की, अभी शायद याद आ जाए। दिल्ली में लाल मस्जिद के अंदर उनका कहीं दर्श था, पूरा शहर उठ के आया हुआ था उनके पास। जब दर्श दे के बाहर निकले तो एक बाबा जी लंगड़ाते हुए आए और इन्हीं को रोक के पूछते हैं, बेटा यहाँ वो दर्श होना था उनका, वो कब शुरू हो रहा है? तो उन्होंने कहा बाबा जी होना क्या, वो तो हो गया और मैं ही हूँ जिसने दिया। तो रो पड़े, कहते बेटा मैं तो इतनी दूर से आया हूँ तो ख़त्म हो गया। कहा अच्छा बाबा जी आप दर्श सुनने आए? बैठे, अभी जो दर्श मैंने पूरे मजमे को दिया ना, वो मैं आपको अकेले को दोबारा दे सकता हूँ, क्योंकि वक्फ इस जना हकली मन तबक मिनल मोमिनी। अल्लाह करे हमारे अंदर याद है दीन वालों की कदर। और यकीन करें, कभी क्वांटिटी ना देखें, क्वालिटी देखें। कितने आते हैं, हु केयर्स, भूसी भर जाए तो क्या होगा, आपका डब्बा तो भर गया लेकिन काम का तो उसमें 1 ग्राम उसके अंदर आटा नहीं होगा। तो हमेशा ये कोशिश करें। देखिए यहाँ पढ़ाने के कई स्टाइल हो सकते हैं, सारा शहर भी आ सकता है इधर, ये भी बता दूँ, लेकिन ये एक बस कुरान की चीज़ें ऐसी होती हैं वो हर एक नहीं बर्दाश्त कर सकता, हर एक सख्त गोली नहीं खा सकता। डाइल्यूटेड फॉर्म में आप देखिए लोग हज़ारों में भी होंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम एक तो ग्रुप ऐसा हो, थोड़ा सा ही हो, जो हर गर्मी सर्दी को बर्दाश्त कर सके। जैसे फ़ौजी होते हैं, जो फ़ौज से ट्रेनिंग ली जाती है, मेरे आपसे ले तो हम तो बिस्तर पर पड़ जाएँ, हॉस्पिटलाइज हो जाए, लेकिन दी जाती, क्योंकि कुछ ना तो दुश्मनों को पकड़ना ना। और हम जैसे कहें नहीं सॉरी एसी लगा के सो रहे हैं फ़ौजी साहब, दुश्मन से कहना ज़रा किसी और मौसम में आना। हमेशा याद रखिए फ़ौज एडवर्स कंडीशंस में काम करती है। यही मैं आप सबको भी आज मैसेज दे दूंगी अभी से, रमज़ान के नाते से आप फ़ौजी बन रहे हैं इस्लाम के। और फ़ौज कभी आम हालात में काम नहीं करती, वो आम हालात में तो बेचारे मोर्चों में बैठे इंतज़ार कर रहे होते हैं, उस वक्त उनकी बस ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, उठाओ बिठाओ भागो दौड़ो ताकि सुस्त ना पड़ जाए। एक ऑर्डर आता है चलो दुश्मन आ गया भागो, वो खुशियाँ मनाते हुए उछलते उठते शुक्र है काम मिला। वो रातों को गर्मी में सर्दी में, ये जो आज के दौर का कुरान है जो तफसीर से आप और मैं पढ़ रहे हैं, वल्लाही मैं पूरे शौर से कह सकती हूँ कि आप इस्लाम के सिपाही बन रहे हैं। कुरान आपको, आप कल के टीचर हैं, आप कल की बच्चों की टीचर हैं, तो अब आपके नखरे इधर करें, हम इतने हम कहें कि आज मेरे साथ ये मसला वो मसला दिस एंड दैट, तो फिर ख़त्म। आज मैंने मुंह होना इसलिए मुझे, मैं नहीं आ सकती, आज मेरे घर में काम है मैं नहीं आ सकती, आज मुझे उधर, मैं अपने से किसी को नहीं कह रही, लेकिन मैं आपको आपका मुकाम याद दिला रही हूँ कि आप जब इतनी मुश्किलों में से सहकर आज बैठे हुए हैं ना, तो आपने बहुत ज़्यादा नफ़े का सौदा किया। बहुत आसान होता है, एप्लीकेशन भी ना दो और टिक करके छुट्टी कर लो, और एप्लीकेशन लिख के दे दो, कौन जाता घर में, को पुलिस भेजेगा, नहीं आ रहे जी नहीं आए, ख़त्म। नहीं कर सकते आप, क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको पता है कि अल्लाह ने आपको कितनी बड़ी दौलत दी है। यही बात यहाँ कह दी कि बस आप इन लोगों के साथ इस काम को करते रहे, कमा अनज़लना अलल मुक्तसिमीन, जैसे कि हमने नाजिल किए इन तकसीम करने वालों पर। अब अगली बहुत ख़तरनाक आयत है, कौन? अल्लज़ीना जअलुल कुरान इदीन, जिन्होंने अपने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अल्लाहुम्मा ला तज़अलना मिन्हु, ऐ नबी उन लोगों जैसे ना हो जाएं कि जिनको हमने किताब दिया और उन्होंने तकसीम कर दिया। अब क्या मुराद है इससे? मुश्किल आयत है कुरान की, इसमें किन लोगों का जिक्र है? मुख्तलिफ मुफस्सरीन कहते हैं कि ये आयत अहले किताब की तरफ है, अल्लाह ने उनको भी तौरात दी थी, लेकिन उन्होंने इस किताब को टुकड़ों में बांट दिया। कौन से टुकड़े थे? अफतू मेनून अभी बादल किताब ही बतक फिरून। क्या तुम किताब के बाज़ हिस्सों पे अमल करते हो, बाज़ को छोड़ दिया? याद रखिए, जो हाल कोई कौम अपनी किताब के साथ करती है, अल्लाह वही अंजाम उस कौम का कर देता है। कौमें किताबों को टुकड़ों में बांटती हैं, अल्लाह कौमों को फ़िरकों में बांट देता है। यह फ़िरका परस्ती की बात है कि जब असल पैगाम से लोग दूर हुए तो फ़िरकों में बट गए, और फ़िरकों में बटने वाले पूरा कुरान कभी नहीं पढ़ते। वो चीज़ें आम कर लेते हैं जो उनके कौल और उनके नज़रिए के मुताबिक होती हैं। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि अल कुरान से मुराद तौरात है, ठीक है, कुरान पढ़ी हुई चीज़। सूरत सबा की आयत 31 में आता है, वक़ाल लज़ीना कफरू, और कहा उन काफिरों ने, लन नूमिन बिहाज़ल कुरआनी, हम तो इस किताब पर हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे, ना तुम लाओ, वला बिल्लज़ी बैना यदैही, और ना उस पर जो इससे पहले था। वहाँ भी देखिए, तौरात को कुरान ही के नाम के साथ जोड़ा गया, तो इशारा है यहूद के उलमा की तरफ, जिन्होंने अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए इस कुरान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। और इनके इस कारनामे का तذکرہ सूरत अलनाम की आयत 91 में भी आता है, तजलूनहु क़राती सतुबदूनहा वतुखून कसीरा, तुमने इसको यानी तौरात को वरक वरक कर दिया, इनमें से किसी हिस्से को ज़ाहिर करते हो और अक्सर को छुपा रखते हो। तो पता क्या चला, पूरा कुरान लेना। अब आप देखिए, देने वाला तो पूरा ही कुरान देता है, जब हम छुट्टियाँ कर लेते हैं तो हमारा कुरान कैसा होता है जी, बताइए, बात समझे? जैसे हम दौरे कुरान करेंगे तो अल्लाह ना करे कि मेरी ज़ुबान से एक आयत भी छूटे, और कभी कोई टंग स्लिप या रिकॉर्डिंग में ना आए तो हमें फिर वो बाद में रिकॉर्ड करके देनी पड़ती है कि ये सेट में डाल दें, ऐब होगा कि कुरान की आयत ही नहीं है। देने वाला तो पूरा ही देगा, लेने वाले कितना लेंगे? आप ज़रा ख़ुद से यहाँ सवाल करें, सूरह हिजर की आयत 91 पे रुक कर, कि सूरत फातिहा से लेकर हिजर की आयत 91 तक मैंने कितना मिस किया, मैंने कितने हिस्सों को छोड़ा और कितनों को लिया। रमज़ान उसका बेहतरीन मौका मेकअप का, अपने पिछले छूटे टेस्ट असाइनमेंट करने का आपके लिए नादिर नुस्खा है, क्योंकि एक महीना तक तकरीबन आपका आगे लफ्जी तर्जमा नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। जिसको इस दौड़ में पीछे नहीं रहना, आगे भी जाके वो अपने पिछले हिस्से को पूरा करे। रमज़ान तो है ही कुरान का महीना, वैसे कुरान पढ़ने की बजाय बैठ के आधा सुपारा याद कर लें, लफ्ज़ी तर्जमा पढ़ लें, दोहरा लें, और दौरे कुरान तो वैसे ही आपकी मदद करेगा। तो याद रखिए कि आधी आधी चीज़ का कोई हुस्न नहीं होता, मज़ा ही नहीं आता, वो चीज़ फिर आखिर हाथ से निकल जाती, फिर कहते हैं अब अगले साल करूँगी, चूँकि मेरी एक सूरत छूट गई है, अब अगले कोर्स में बताइएगा, हम वहाँ पर आएँगे। अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, फ़वरबिका लनसअलन्नहुम अजमईन, तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब की कसम। देखिए बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है, पीछे क्या था, तेरी उम्र की कसम, और यहाँ क्या आ रहा है, आपके रब की कसम। लग नहीं रहा कि नबी का दिल दुखा हुआ और अल्लाह उनको प्यार कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे एक दुखी बच्चा जिसकी माँ उसको प्यार करती है, मेरे बच्चे तेरा दिल टूटा। कभी आपको शक पड़ जाए ना, बेटी दुखी है अपने घर में या बेटा परेशान है, तो आप आते जाते उसको गले लगाते हैं, आप उसकी पीठ सहलाते हैं, आप उसकी आंखों के आंसू को रोकने की कोशिश करते हैं। कैसे हो सकता है कि दीन के रास्ते में नबी का दिल दुखे और अल्लाह कुछ ना कहे? हमें पता है, हमें सब पता है, आपके रब की कसम, हम इन सब से ज़रूर पूछ के रहेंगे। किन सब से? जो आपको सताते हैं, जो आपको मक्का से निकालने की तैयारियाँ कर रहे हैं। सूरत अल अराफ आयत 6 में भी यही बात पढ़ चुके हम, वलनसअलन्नल्लज़ीना उर्सिला इलैहिम वलनसअलन्नल्मुरसलीन, हम लाजमन पूछ कर रहेंगे इनसे भी जिनकी तरफ रसूलों को भेजा गया, और इनसे भी जिनको रसूल बना कर भेजा गया। क्या ये थोड़े देर की बात है, एक एक चीज़ का हिसाब होगा कि बताओ नेमतों की क्या कदर की। किस चीज़ के बारे में पूछेंगे? अम्मा कानू या मलून, हर उस चीज़ के बारे में पूछेंगे जो ये करते रहे। आप क्या करें, यानी इनको छोड़ दें, जो नहीं मान रहे उनको ना कुछ किया आप, बल्कि फस द बिमा तोमर वारिदन मुशरिकीन, अब आप अलल एलान बयान करें जिसका आपको हुक्म दिया गया, और इन मुशरिकों की ज़रा परवाह ना करें। आपका काम यह है, आप दाई दीन हैं, आप मुबल्लिग हैं, आप इस दावत के काम को खुल के करें। ये है वो हुक्म कि अब ढकने छुपने की बात नहीं, मसले छुपाने नहीं, कोई हुकमत नहीं, कुछ नहीं, अब आप आराम से बताएं। अभी तक तो इनफरादी बातें बताते थे ना। जब आपने शुरू में, अब देखिए, अपनी बीवी से बात की, दोस्त से बात की, चचा जात भाई से बात की, ठीक है, मुंह बोले बेटे से बात की, हो गई बात, सब हो गए, तकरीबन 3 साल तक पहली वही के बाद से इनफरादी दावत का सिलसिला चलता रहा था। इनफरादी दावत, वन ऑन वन बेस पर, ये हम सबके लिए भी अमल की बात है। जिस माशरे में दीन की कोई भी दावत नई नई आती है ना, तो वहाँ फ्लायर्स काम नहीं करते, वन नेट काम नहीं करता, वहाँ वर्ड बाय माउथ लोगों को बताते हैं कि आके देखो ये कितनी प्यारी बात है। नाम छाप दे देंगे, लोग कहेंगे अब हैं कौन, हम आपको नहीं जानते, आपके नाम को क्या जानेंगे। हाँ, बाद में सिर्फ नाम पे भी हज़ारों लोग जमा हो जाते हैं, वो बाद में होता है, कई साल के बाद, जब साथ कितनी बातें जमा हो चुकी होती हैं। तो जब ये वक्त ख़त्म हुआ, तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फस्त अभी मा तो उमर, अब अल ऐलान दावत कीजिए। वो खुफिया दावत नहीं थी, याद रखिए, बाद लोग गलती खाते हैं, कहते हैं नबी सल्लम की इब्तदाई 3 साल की दावत खुफिया थी, हिडन थी, सीक्रेट थी, नेवर, दीन की दावत कभी खुफिया नहीं हुई। एक दिन ऐसा नहीं आया कि आपने अपनी दावत को खुफिया रखा हो, बल्कि फितरी और तदरीजी तरीका था, ग्रेजुअल थी। जिस जगह बात करने का फ़ायदा है वहीं करेंगे ना, जिस तरह से बात करने का फ़ायदा है। तो मेरे और आपके लिए भी ये अमल है, अगर आपको लगता है अभी आपके ख़ानदानों में ये दावत नहीं आई, तो वन ऑन वन बेस पे बात करें। अगर आपको लगता है अभी आपकी दोस्तों ने इस दावत को नहीं सुना, तो फिर आप अपनी दोस्तों को जाके किसी पार्टी में सबके बीच में लेडीज़ प्लीज़, सिस्टर्स प्लीज़ ना कहा करें, वन ऑन वन बेस पे चाय का कप हाथ में पकड़ा के दर्द मंदी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ उनसे बात किया करें कि आओ मेरी बहन, देखो कितनी प्यारी चीज़ है, तुम आओ। इस वक्त जो कन्विंसिंग है वो फ्लायर्स के साथ नहीं होती, ये इंसानों के साथ होती है। इसी का हुक्म इसमें मिल गया, और अब अलगान दावत दो, फिक्र ना कीजिए, लोग आपकी बात माने ना माने, और आपको पता है कि इसके बाद आपने क्या किया, अल्लाह अकबर, इस हुक्म के बाद आप कोहे सफ़ा पर गए, ऊंची आवाज़ से आपने लोगों को पुकारना शुरू किया। अरबों में रिवाज क्या था कि जब कोई अहम खबर किसी को देनी होती थी ना, तो कोहे सफ़ा पर खड़े होते और जाके आवाज़ लगाते, बरहना होते यानी कपड़े उतारते, नंगे होके सामने खड़े होके या सबाहा की दावत देते। यानी एक ऐलान था, क्योंकि ना माइक थे, ना कोई टेक्सटिंग थी, ना कोई ईमेलिंग सिस्टम था। जब लोग दूर से देखते पहाड़ पे एक शख्स नंगा खड़ा है और शोर कर रहा है, तो इसका तक कि कोई खबर है, या तो किसी दुश्मन ने हमला कर लिया, कोई कुछ है, क्योंकि उस दौर में यही खतरे होते थे। ऐसे शख्स को वो कहते थे नज़ीर उरियाँ, लिख लीजिए, नज़ीर डराने वाला, उरियाँ नेकेट, बेहुदा रस्म थी। जब अल्लाह के नबी सल्लम के पास दावत का मरहला आया, तो कुछ लोगों ने आपको मशवरा दिया कि आप भी अरबों की यही आदत अपनाइए, तो अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, मैं ये गंदी आदत नहीं अपनाऊंगा, कपड़े नहीं उतारे, लेकिन कोहे सफ़ा पर खड़े हुए वाह सबाहा का नारा लगाया। जो लोग आपकी आवाज़ सुन रहे थे भागम भाग आपके पास पहुँचे, जमा हो गए, जब सब आ गए, तो फिर आपने उनको कहा, लोगो, वही जो मरूफ फिक्रे आपने सुने हुए हैं, तो मैं कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से दुश्मन आ रहा है, तो मानोगे? कहा मानेंगे, क्योंकि आपने कभी झूठ नहीं बोला, आप सादिक भी और अमीन भी हैं। फिर उस वक्त आपने कहा कि कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, उस वक्त आपके बदकिस्मत चचे अबू लहब ने तब्बन लक अली हाज जमाता ना कहा, तेरे हाथ टूट जाए ना उस बिल्ला, हमें इसलिए जमा किया था, उस पर तब्बत यदा अबी लहब व तब नाजिल हुई थी। तो कब डरने की बात नहीं, ना कफ़ई ना कल मुस्तहज़ईन, हम आपकी तरफ से इन मजाक उड़ाने वालों से निपटने के लिए काफ़ी हैं, डोंट वरी, मुखालफत की फ़िक्र ना करें, लोग आपका बाल से बीका नहीं करेंगे। क्यों इन काफिरों से क्यों ना डरें? क्योंकि इनके अंदर दमखमी नहीं है, ये तो वो लोग हैं जो अल्लज़ीन यजलूना मा अल्लाह इलाहन आखर, जो अल्लाह के साथ दूसरे माबूद खड़े बैठे हैं, फसौफ़ यालमून, तो अन करीब इनको मालूम हो जाएगा। यानी काफिर के अंदर कोई दमखम ही नहीं होता। मुशरिक तो दुनिया का सबसे डरपोक शख्स है, सिर्फ मुवाहिदों को खड़े होने की देर है। तौहीद से तो काफिर इतना डरते हैं कि तौहीद वाले की आंखों में आंखें नहीं डालते। ये सारी बातें करके अब बिल्कुल आखिर सूरत में दुख सुख है क्या, अब इसको ज़रा मोहब्बत करने वाले रब की तरफ से, प्यार करने वाले दोस्त यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच के ताल्लुक के नाते से देखिएगा। वलकत नालमुअन्नक यज़ीकु सदरुक, और हम जानते हैं कि आपका सीना तंग होता है, आपका सीना घुटता है। किस बात पे? बीमा यकूलून, उन बातों पे जो ये आपके खिलाफ करते हैं, पीठ पीछे जो करते हैं, मुंह पे तो कोई नहीं करता था। ये जो आप अपने दिलों में आपके बारे में लेके बैठे होते हैं ना बातें, हमें पता आपका दिल दुखता है। और दिल की बातें कभी कभी किसी की ज़ुबान पे भी आ जाती थी तो क्या खुशी होती होगी नबी को सुनकर कि लोग उनको दीवाना, मजनू, काहिन और क्या कुछ कहते हैं, और बिगाड़ डाल दिया और डिसिप्लिन नहीं और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आप सोचिए अल्लाह के नबी को खुशी होती होगी, क्योंकि जो ही ऐलान सरेआम किया ना, दावत खुलेआम हुई, तूफान उमड़ गया मुखालफतों का। पहले मरहले पर यह मुखालफत अगर थे सिर्फ ज़ुबानी तानो तशनी और बदगुई तक थी, कोई काहिन, कोई मजनू, कोई शायर, कोई कुछ, कोई कहता, कोई बहुत दूर की बात ला के कहता है आपके घर में एक अजमी गुलाम छुपा हुआ है जो आपको ख़बरें देता है और आप उससे सुन सुन के आके सीखते हैं और हमें पढ़ाते हैं। किसी ने इससे भी पढ़ के जुरत की, कहा हाँ आप पर असेब का साया हो गया, और कोई हमदर्दी की बातें कोई इतने। एक शख्स था उतबा बिन रबिया, बड़ा मुअज्ज़ज़ अक्लमंद शख्स समझा जाता था अपने माशरे का, आपके पास आया हमदर्दी करते हुए, कहने लगा देखो मेरे भतीजे, बड़े बड़े आलिमों को मैं जानता हूँ और काहिनों से मेरे ताल्लुक आता है, ज़रा बताओ मैं किसी को बुलाऊँ ताकि तुम्हारा इलाज कर दे। अब आप सोचिए ये कैसी है, जैसे आप किसी अच्छे भले शख्स को जो दीन पे अमल कर रहा हो, देखें बेटा दाढ़ी भी रख ली है खैर से, शलवार भी थोड़ी सी टखनों से ऊंची हो गई है, और वो काम पे से भी वक्त निकाल के अब थोड़ा कुरान पढ़ने लगा है, तो एक दिन उसको बुलाया करना बेटा इधर आओ, एक डॉक्टर से मेरी सलाम दो, पागल खाने में काम करता है, ज़रा तुम्हें भेजूँ उधर, कैसा लगेगा, कितनी तकलीफ़ होती होगी, दिल की घुटन का तस्करा। या फिर देखिए गुस्सा नहीं है, तकलीफ़ है, और बहुत कम लोग किसी के गुस्से और किसी की तकलीफ़ को समझ सकते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कभी भी किसी जगह डिसिप्लिन के लिए कोई बात कही जाए तो कितने लोग सोचते हों कि आज इनको बड़ा गुस्सा आया हुआ है, गाली देंगे अगर आप ये सोचेंगे, गुस्सा नहीं होता। गुस्से में तो लोग पाँव पटक के चले जाते हैं, ये दुख होता है, तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। अल्लाह के नबी कभी चीखे चिल्लाए नहीं, सिर्फ लोगों को उनकी गलत बातों पे एहसास दिलाते थे कि लोगों अल्लाह ने तुम्हें सब मिनल मसानी और इतनी प्यारी चीज़ देने का फ़ैसला किया हुआ है, तुम मेरी कदर क्यों नहीं करते, तो क्या कहो कि तुम इनको पीछे करो, और क्या करो इस दुख को दूर करने के लिए। दूसरा मरहला, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, आप तस्बीह कीजिए अपने रब की सुबह शाम, लोगों के जिक्र अलापने की बजाय रब का जिक्र करो, कुछ सुकून और आएगा ना। देखिए जब बात की जाती है तो दिल थोड़ा हल्का हो ही जाता है ना, तो कहा तुम मेरे साथ बैठ के दुख सुख कर लिया करो, और तसल्ली चाहिए तो तीसरा मरहला, वकुम मिन साजिदीन, फिर अपना सर सजदों में रख लें। ये है सारी मुखालफतों का इलाज, जब आप पूरी कोशिश करें, हर मुमकिन चीज़ को जगह पर रखने की कोशिश करें, लोग ताबुन ना करें, सीरियस ना लें, कुछ लें बाकी ना लें कुछ नहीं, तो फिर एक आखिरी हल है कि फ़ुज़ अमरी अल्लाह, मैं तो अपना मामला अल्लाह पे डालता हूँ, इन नमाश को बसी व हुसनी अल्लाह, अल्लाह मैं लई कश खुदा फ़कुवती वक़िल्लत हीलती, फिर तो ये दुआएं ज़ुबान पे रह जाती हैं। फिर इंसान को अपनी ज़ाती इस्लाह और अल्लाह के साथ तल्लुक़ और इबादत पर गौर करना चाहिए। कब तक ये करें आप? वाह बुद रब्बा का, चौथी चीज़ अपने रब की इबादत कीजिए। कब तक? हत्तयातियकल यकीन, जब तक के आपके पास वो यकीनी चीज़ आ जाए। बहुत गलत तर्जमा किया तसव्वुफ वालों ने इस आयत का, कहते हैं बस तब तक अल्लाह की इबादत करो, नमाज़ें पढ़ो जब तक यकीन नहीं आता, जैसे यकीन आ जाए अल्लाह है सब ठीक है तो बेशक छोड़ दो, फिर तुम पहुंच गए ऊपर सलूक की मंजिलों पर। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, लिखिए यल यकीन मौत का नाम है, मौत के बहुत सारे नाम है ना, उर्दू में भी तो हम मौत को क्या नाम देते हैं, कभी कज़ा, कभी अजल, कभी कहते हैं फ़लाँ अल्लाह को प्यारे हो गए, तो यहाँ यकीन से मुराद यकीनी चीज़ है, यानी ज़िंदगी की आखिरी घड़ियों तक बंदगी में डूबे रहे। अल्लाह की मदद भी लोगों ने कहा यकीनी चीज़ आ जाए, कुछ भी कह लीजिए, सारी बात का खुलासा क्या है कि लोगों की तरफ से मिले हुए दुख रब के सामने झुक कर दूर कर लो। आप पर मुझे भी यही मैसेज दिया जा रहा है, पूरी कोशिश करेंगे आप घर वालों से, इधर से उधर से दीन की बात पहचाने की, लोग आपकी मेरी बात नहीं मानेंगे, करें क्या, आप अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को बढ़ाते रहें। जो काम आप और मैं अपनी कोशिशों से नहीं कर सकते उसको दुआओं से करा लीजिए। दुआ होती एक किस्म की आजजी का इजहार होता है कि मेरे रब मैं पूरी कोशिश से जो नहीं कर सका, हैया अल सला और हैया अल फला, मैं अब वो तेरी तरफ आके ले रहा हूँ। मुझे सारा दिन भाग भाग के सब कुछ नहीं मिला, तो या कना बदो या कनस्तीन, मुझे अपनी तरफ ले आ। ये थी ये सूरत और ये सबक, सब बातों का खुलासा। अल्लाह ताला नबियों की कहानियाँ सुनाकर हम सबको भी आज के दौर में अपने इस दीन पे अमल करने की दावत देते हैं। हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जितना अहम समझेंगे, अल्लाह हमें उतना इससे फ़ायदा देगा। घर वाले भी इन चीज़ों को तभी अहमियत देंगे जब हम इसको अहमियत देंगे। और ये भी बात इससे समझ आती है कि मुखालफत चाहे बहुत सारे लोग कर रहे हों, एक अल्लाह की तरफ से मिली हुई तसल्ली बड़ी खूबसूरत होती है। ऐसे नहीं होता, आप देखिए बच्चा कितनों से लड़के आता है और माँ की तसल्ली से साथ ही चुप। सिर्फ माँ प्यार का हाथ पकड़े, अच्छा मेरा बेटा चुप, मैं पूछूंगी, ख़त्म, स्टॉप, वहीं ख़त्म। अल्लाह को सुनाना सीखें इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला हम सबकी मदद करेगा। और आप देखेंगे कि सूरत हिजर के आखिर में ये जितनी भी बातें नबी सल्लम की हमने पढ़ी हैं, अब चूंकि आप सब एक स्ट्रेच में अल्लाह के हुक्म से दारे कुरान सुनने वाले हैं, तो उसके नाते से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। रमज़ान में एक बहुत बड़ी खैर ये होती है कि हम इतने थोड़े वक्त में मक्की मदनी पूरा कुरान पढ़ लेते हैं, तो नबी सल्लम से बड़ी दोस्ती हो जाती है। क्योंकि अभी देखना, एक मक्की सूरत शुरू हुई, बहुत दिन चली, फिर कुछ चली, फिर मदनी। अब काफ़ी दिनों से हमने मदनी सूरत नहीं पढ़ी, तो अब हमें मदनी सूरतों का मिजाज नहीं मिल रहा। तो लंबी चीज़ होती है, उसका असर देर पर तो होता है लेकिन बाज़ दफ़ा फैल जाता है। दौरे कुरान में बहुत थोड़े दिनों में हम बहुत कुछ लेते हैं। आप ये सारी आयतें जो आखिरी हमने पढ़ी हैं, ख़ास तौर पे इस पे आप बाद में जाके गौर कीजिएगा। आपका इन आखिरी आयतों पे, ये स्पेशली जो आयतें आयत नंबर 87 और 88 है, इसको अपने ऊपर होमवर्क के लिए लिखिए। ला तमुद्दन आई नईक, क्या मैं अभी भी अपनी आँखों को लंबा करती हूँ? मत क्या होती है तजवीद में, लंबा करो। तो मत के किसी की कोई चीज़ देखी तो हाय यूँ देखते गए, इतनी लंबी गाड़ी, इतना बड़ा घर, हाय दुल्हन का ये जोड़ा, हाय ये सेटिंग। नहीं, अब इन चीज़ों से मत अपने आप को देखो, दुनिया की अहमियत ख़त्म हो जाएगी आपकी नज़रों से जब आप आएंगे असल दीन की खूबसूरती की तरफ।
إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.